प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन निर्विशेष तारे कहे ये श्रुतिगण प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन निर्विशेष तारे कहे ये श्रुतिगण प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन निर्विशेष तारे कहे ये श्रुतिगण प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन का अनुवाद सब साथ में पढ़ेंगे। वेदों में जहां कहीं भी निराकार का वर्णन हुआ है वहां वेदों का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हर वस्तु दिव्य है और भौतिक गुणों से सर्वथा स्वतंत्र है। तात्पर्य महर्षि वाल्मीकि श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में अनेक निर्विशेष कथन मिलते हैं, जैसा कि श्वेता शतक उपनिषद में कहा गया है, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु सशतो कर्ण सवेति वेद्यम न चतस्यास्ति वेता तम आहुर गृभं पुरुषं महंतम। यद्यपि भगवान बिना हाथों और पैरों के बतलाए गए हैं, फिर भी वह यज्ञों की सारी आहुतियां स्वीकार करते हैं। यद्यपि उनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। यद्यपि उनके कान नहीं हैं, किंतु वे सब कुछ सुनते हैं। जब ये कहा जाता है कि भगवान के हाथ पैर नहीं हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वे निराकार या निर्विशेष हैं। प्रत्युत उनके हाथ या पांव हमारी तरह भौतिक नहीं हैं। उनकी आंखें नहीं हैं, फिर भी वे सब कुछ देखते हैं। इसका अर्थ ये है कि उनकी आंखें हमारी तरह भौतिक और सीमित नहीं, प्रत्युत उनके पास ऐसी आंखें हैं जिनसे वे भूत वर्तमान तथा भविष्य को ब्रह्मांड के कोने कोने में और सारे जीवों के हृदय के कोने कोने में झांक सकते हैं। इस तरह वेदों के निर्विशेष कथनों का आशय भगवान में भौतिक गुणों का निषेध करना है। उनका उद्देश्य भगवान को निर्विशेष रूप में स्थापित करना नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्या मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वकान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णा पादान सहगन ललिता श्री विशाखां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्णा। सो श्री चैतन्य चरितामृत जो है इसके बारे में कुछ व्याख्यान करते हैं कि किस प्रकार से अनेकों ग्रंथों में चैतन्य चरितामृत महान ग्रंथ है। जैसे कि शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा रामायण को बताया गया है, रामायण पढ़ते हैं सभी लोग, उत्तर भारत में तो अधिकतर पढ़ते हैं। रामायण जो है शास्त्रों में कानून बताने के लिए, लॉज ऑफ भक्ति, भक्ति के नियम क्या है, इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके प्रकट होते हैं कि ये नियम अपनाने चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ग्रस्त जीवन कैसा होना चाहिए कैसा नहीं होना चाहिए, भाई के साथ कैसा व्यवहार, माँ के साथ कैसा व्यवहार, एसोसिएशन कैसा होना चाहिए, संघ कैसा होना चाहिए, कैकेयी ने मंथरा का संघ किया तो कितना परिवर्तन आ गया। तो इस तरह से कानून भक्ति का जो है लॉज वो बताती है रामायण। वैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे भक्ति रसामृत सिंधु भी लॉ बुक है, लेकिन आचार्यों ने, पूर्ववर्ती आचार्यों ने बताया कि रामायण कानूनी किताब है फुली, जिसके अंदर रिवील किया गया है कि भगवान के नियम क्या हैं। भक्तों के नियम तो भक्ति रसामृत सिंधु में है, लेकिन भगवान के नियम क्या है, लॉज ऑफ गॉड, ये रामायण है। भागवतम बताती है भगवान की क्रियाएं क्या है, भगवान कौन कौन सी क्रिया करते हैं, ध्रुव के साथ क्या संबंध है, प्रहलाद के साथ क्या संबंध है, अजामिल का उद्धार कैसे करते हैं, अनेकों क्रियाओं का वर्णन, एक्टिविटीज ऑफ गॉड एक्सप्लेन्ड इन भागवतम। और भगवान का हृदय कैसा है, हार्ट ऑफ गॉड, हृदय कैसा है जो कि भक्तों के साथ उनका रमानंद राय हो, सर्वम भट्टाचार्य हो, या फिर जगाए बधाई क्यों ना हो, सबके साथ भगवान का कैसा व्यवहार है, ये हृदय बताता है कौन, चैतन्य चैतन्य। तो हार्ट ऑफ गॉड है चैतन्य चैतन्य। तो लॉ कौन सा है, लॉ बुक रामायण, एक्टिविटीज ऑफ गॉड बुक भागवतम, एंड द हार्ट ऑफ गॉड इज चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य बहुत ही महान, हृदय परिवर्तन करने वाला ग्रंथ है। जो भक्त सच में भक्ति में प्रगाढ़ होना चाहते हैं, चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने ट्रांसलेशंस में सब कुछ प्रदान किया, एक भक्त के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए। चैतन्य चरितामृत के अंदर और आचार्य वर्णन करते हैं कि जैसे चैतन्य महाप्रभु अगर मान लें कि एक गन्ने के समान है, गन्ना होता है ना शुगर केन, गन्ने के समान है, जिनको जितना पीसा जाए उतना ही जूस बाहर निकलता है, मिठास। गन्ने का ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा ही डालना है, इधर से डालो, तोड़कर आधा डालो, तीन बार फोल्ड करके डालो तो क्या निकलता है, जूस निकलता है, वो भी कौन सा, चीनी वाला मिठास है। लेकिन ये गन्ने का जूस बिकता कहाँ है, गन्ने की दुकान पर। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु रूपी नेक्टर जो है, मिठास भरा, प्रेम भरा, भगवान का जो ये प्रेम अवतार है, ये कौन सी दुकान पर बिकता है? तो उस दुकान का नाम है चैतन्य चरितामृत। इस दुकान पर चैतन्य महाप्रभु रूपी गन्ना जो पूर्ण रूप से मिठास से भरा है, वो हम भक्तों को प्राप्त होता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, चैतन्य चरितामृत एई अमृतेर सिंधु। कौन सा सिंधु है? अमृतेर सिंधु। अमृत का पूरा सिंधु समुद्र है चैतन्य चरितामृत। जहां से पढ़ना शुरू कर दो आनंद का अनुभव होता है। चैतन्य चरितामृत एई अमृतेर सिंधु, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। अगर इसका एक बिंदु भी श्रवण किया तो कर्ण से जाते ही मन को तृप्त कर देता है। हमारे कान से बहुत सारी चीजें अंदर जाती हैं, रोड पे चलने वाला ट्रैफिक का पॉल्यूशन का नॉइस पॉल्यूशन होता है, वो कानों में जाता है। हम देखते हैं बहुत सारे एफएम सुनते हैं, ओला कैब करेंगे आप, उबर करेंगे तो उसमें एफएम चलता रहेगा, बोलो बंद कर दो तो नहीं करेगा, वो भी कान में जाता है पर मन को कभी तृप्त नहीं करता। लेकिन चैतन्य चरितामृत क्या है? चैतन्य चरितामृत एई अमृतेर सिंधु, अमृत का सिंधु है, कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु। इसकी एक बिंदु भी कान में जाते ही अमृत के समान तृप्त कर देगी मन को तृप्त। आदमी बोलता है ना, कभी कभी हम प्रसाद खाते हैं तो इतना आनंद आता है प्रसाद खाने में कि है ना, ऐसा लगता है कि मन तृप्त हो गया है ना। तो मन तृप्त करने वाला ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। आप जानते हैं परीक्षित जब सुखदेव गोस्वामी से कथा श्रवण कर रहे थे तो चार दिन बीत जाने के बाद में जब श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद प्रारंभ होने वाला था तो 9 स्कंदों पर भगवान की कथा श्रवण करने के बाद परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, आपको कुछ जल पान करना, पानी पीना होगा, चार दिन से प्यासे हैं। तो परीक्षित कहते हैं, प्रभु पानी की बात मत करो, ये जो श्राप मिला है ना, ये भी पानी की वजह से ही मिला है। जब जंगल में गया था प्यास को सहन नहीं कर सका तो शमिक ऋषि के आश्रम में प्रवेश कर गया और जाकर के मैंने ऐसा व्यवहार किया जिसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने मुझे श्राप कर दिया, तो इसलिए अब मुझे प्यास, अब पानी की बात तो मत करो, कुछ खा लो अगर पीना नहीं है तो। मना कर दिए, बोले कि नहीं, भगवान आपकी कथाओं से जो आनंद मिल रहा है ना, उस आनंद में मैं भूल ही गया हूँ भूख प्यास कुछ होती है। ये भगवान की कथाओं का व्याख्यान है। अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, उसकी प्रथम भूमिका में और प्रथम अध्याय की भूमिका में भी श्रील प्रभुपाद बार बार लिख रहे हैं, जो भी व्यक्ति कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक अपने कर्ण से मन तक ले जाता है उसके अंदर ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा लगता है कि बस तृप्त हो गया, अभी भूख प्यास प्रसादम टाइम 9 o'clock, कुछ देखने की जरूरत नहीं, बस चलने दो चलने दो, ऐसे भाव आ जाता है। ये कोई ध्यान से अगर श्रवण करें, आप देख लीजिए कि जिधर भक्ति आने वाली होती है ना, उस भक्ति की ग्राउंड में ही भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और भक्ति भक्तों से प्राप्त होती है। जैसे कि भागवतम में वर्णन है कि जो भगवान के पिता हैं वसुदेव, वो एक भक्त हैं जो हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को धारण करते हैं। और हम जानते हैं कृष्ण जन्म उत्सव जब भी बनाते हैं तो ये कई बार सुन चुके हैं कि वसुदेव के हृदय से भगवान वसुदेव के मन में आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में आए, देवकी के मन से देवकी के हृदय में आए और फिर देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आए, ऐसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर व्याख्यान करते हैं जो कि जीव गोस्वामी की टीकाओं में भी वर्णन है कि जो ये देवकी माता है ये भक्ति स्वरूपा है। देवकी को भक्ति बताया गया है, भक्ति माता का स्वरूप, क्योंकि उन्हीं के गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं। तो देवकी भक्ति है, भक्ति के गर्भ में कौन है? भगवान। तो देवकी कौन हो गई? भक्ति माता। और भक्ति माता जो है इनको भक्ति प्रदान करने वाला कौन है? वसुदेव, जो कि भक्त है। और इन भक्ति के अंदर भी, गर्भ के अंदर, भक्ति के अंदर भी 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। कौन है वो? जो कि कालनेमी के पूर्व जन्म के 6 पुत्र जो कि अभी देवकी के पुत्र बनकर प्रकट हुए और 6 के 6 मारे गए। और 7वें स्थान पर बलराम जी प्रकट होते हैं कि नहीं?
तो हम सुनते हैं देवकी माता के गर्भ से निकाल करके संकर्षण की कथा सुनते हैं हमेशा कि निकाला और रोहिणी के गर्भ में डाल दिया गया। तो जो संकर्षण को निकाला गया आकर्षण करके क्यों निकाला, पहली बार में ही रोहिणी माता की गर्भ में डाल देता, क्यों डाला बता सकते हैं कि देवकी माता की गर्भ में बलराम आए सप्तम पुत्र और उनके गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में डाला, हमेशा सुनते पर ऐसा क्यों किया, क्या रीजन है। जीव गोस्वामी अपने संदर्भ में वर्णन करते हैं ये इसलिए किया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जहां आने वाले होते हैं वो पहली चीज तो भक्ति होनी चाहिए, देव की भक्ति है। दूसरी चीज वहां पे छह प्रकार के अनर्थ समाप्त हो जाने चाहिए, तो छह पुत्र समाप्त हो गए और सातवां पुत्र बलराम, बलराम भगवान के वो अवतार हैं जो भगवान की विशेष लीलाओं के लिए ग्राउंड बनाते हैं। जैसे जिस मंदिर में हम बैठे इस फ्लोर को बलराम का एक्सपेंशन बोला जाता है, मृदंग जो भगवान की सेवा में लगता है बलराम का एक्सपेंशन है, जो घंटी तुरई बजती है भगवान की आरती में वो सब भगवान बलराम का एक्सपेंशन है। तो जिस जगह भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं उससे पहले बलराम आकर के तैयारी तो करेंगे, तो ग्राउंड बना करके अपने हल से खुदाई करते हैं अंदर देवकी के गर्भ में और सारे के सारे छोटे छोटे अनर्थ भी समाप्त कर देते हैं, कहते हैं अब कृष्ण आपके लिए तैयारी है अब आप आइए, और फिर उनको निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल देते हैं, तब 15 दिन बाद कृष्ण उसमें प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण हृदय में नहीं आया, लेकिन चैतन्य चरितामृत ऐसा ग्रंथ है इसके श्रवण करने मात्र से वही फल मिलता है जो वसुदेव जी से कथा सुनते सुनते देवकी के मन में कृष्ण आया, वही फल मिला। कर्ण मन तृप्त करे यार एक बिंदु, इसकी एक बिंदु भी कान से अंदर जाते ही मन को तृप्त करेगी। इसीलिए कहते हैं कि चैतन्य चरितामृत कई लोग कि हम पढ़ सकते हैं क्या, जब श्रवण करते हैं तुमको लगता है हम पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में प्रथम अध्याय में बताया गया, अन अर्पित चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलो समर्पितुम अनंत उज्ज्वल रसाम सुभक्ति श्रियम हरि। अन अर्पितम चरिम, अर्पित नहीं किया हुआ चरिम पहले, चिरात दीर्घ काल से ये वर्णन नहीं किया गया क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को त्रियुगी कहते हैं, तीन युगों में प्रकट होते हैं और कलयुग में छन्न अवतार में प्रकट होते हैं, इसलिए चतुर्युगी नहीं बोला गया भगवान को, त्रियुगी, तीन बार अवतार प्रकट होता है, चौथी बार में मनुष्य रूप लेकर के आते हैं तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ता कि भगवान है। तो अन अर्पितम चरिम चिरात करुणाय अवतीर्ण कलो, लेकिन ये कलयुग में आते हैं करुणा अवतार, चेतन कौन है करुणा अवतार, करुणा अवतीर्ण कलो समर्पितम अनंत उज्ज्वलम, और इनको अर्पित करने के लिए कौन सा ग्रंथ है, रसाम सुभक्ति श्रियाम ही। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो नए नए भक्त है ना, नियोफाइट डिवोटीज, उनको चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए। आदि लीला प्रथम अध्याय चौथा श्लोक चौथा प्यार उसमें ये वर्णन है कि नए जो नव दीक्षित भक्त है उनको चैतन्य चरितामृत नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने कहा पहले भगवद गीता फिर श्रीमद भागवतम उसके बाद चैतन्य चरितामृत, क्योंकि जब हम कृष्ण को समझ लेंगे उसके बाद ये कलयुग अवतार चैतन्य महाप्रभु को हम समझ पाएंगे, वरना क्या होगा कि हम अपराध करेंगे, भगवान को ऐसा साधारण समझ लेंगे और वो सही नहीं है। भगवान के चरणों में अपराध किया तो बहुत गहरा अपराध होने के बाद भक्ति कई कई जन्मों तक प्राप्त नहीं होने वाली है। तो इसलिए ये जो अनअर्पित ग्रंथ था चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है उनके लिए जो चैतन्य को समझ चुके हैं, जो कृष्ण को समझ चुके हैं उनके लिए ये ग्रंथ है। और इसके बेनिफिट क्या है, चैतन्य चरितामृत पढ़ने के क्या फायदे हैं, जैसे हर एक दवाई खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है इसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ ले सकते हैं और क्या क्या इसकी उपलब्धियां हैं, क्या क्या फायदे हैं। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, श्री सीताराम गौरनता की। तो कहते हैं कौन व्यक्ति पढ़ सकता है, तो कहते हैं नया भक्त नहीं पढ़ सकता है, भक्त को कुछ काल के लिए टिका होना चाहिए और उसको जप किया होना चाहिए, उसने कौन सा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो स्वभक्ति श्रीयाम हरि, भक्ति की जो हरि की भक्ति है उसे अपने आप ही ये ग्रंथ प्रकट कर देता है, प्रदान करता है। लेकिन कहते हैं इसका फायदा क्या है, ये अंश कहे सुने से ही धन्य, आचिरे मिले बेतार श्री कृष्ण चैतन्य। ये अंश कहे, जो इसके अंश को कहता है, मतलब मान लो चैतन चैतामृत का क्लास है और इसका एक ही पाया डिस्कस किया जा रहा है, लेकिन इसका एक अंश भी कहा गया, ये ही अंश कहे सुने से ही धन्य, जो कहता है जो सुनता है दोनों क्या हो जाते हैं, धन्य। और कैसे धन्य हो जाते हैं, अचिराते मिले तार श्री कृष्ण चैतन्य, उसको तुरंत ही श्री कृष्ण चैतन्य अपने जीवन में प्राप्त हो जाएगा। तो उसको ये सुनना चाहिए। और आगे वर्णन करते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य लीला अदंत अद्भुत, कैसी है, अद्भुत आनंद, बड़ी अद्भुत है, ऐसी लीला कभी पहले सुनी नहीं देखी नहीं। जब व्यक्ति मायापुर जाता है, नवदीप धाम जाता है, परिक्रमा करता है या चैतन्य चैतामृत सुनता है तो उसको लगता है ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, इससे पहले तो ये कभी सुना नहीं, बड़ा अद्भुत है। और कैसा है, अनंत है, कभी समाप्त नहीं होता। कितनी लीलाएं सुन लो, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, चैतन्य चरितामृत और भी चैतन्य चंद्रोदय नाटक, सुनते ही जाओ अनंत लीलाएं हैं। श्री कृष्ण चैतन्य लीला अद्भुत अनंत, ब्रह्मा शिव शेष यार नहीं पार अंत। ब्रह्मा भी लगे हैं वर्णन करने में, चतुर्मुखी ब्रह्मा बोल रहे हैं चैतन्य लीलाएं लेकिन समाप्त नहीं हुई। शिव भी बोल रहे हैं, शिव कितने मुख हैं, पंचमुखी शिवा बोले, पांच मुख से शिवजी भी बोल रहे हैं। और शेषनाग के कितने मुंह हैं, हजारों मुख से भी यार नहीं पाए अंत, लेकिन चैतन्य चरितामृत का अंत आज तक नहीं हुआ। ये तो कंपाइल कर करके कृष्णदास कविराज कैसे हैं, जो चैतन्य भागवत में मिस हो गया, जो चैतन्य मंगल में मिस हो गया, उसको मैं इस चैतन्य चरितामृत में डाल रहा हूं। समझ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा दिया गया है ना, लेकिन ब्रह्मा शिव शेष गा रहे हैं फिर भी इनकी कथाओं का अंत आज तक हुआ नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसको हमें बोलने का मौका मिल रहा है। तो और सब आप सभी भक्तों का भी धन्यवाद जो कि मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति से सुनने के लिए आ गए हैं। तो सुनने वाले को और सुनाने वाले को थोड़ी थोड़ी कृपा तो मिलेगी है, उसी कृपा की अभिलाषा से हम आज के इस पयार पे चर्चा करेंगे। साथ में बोलिएगा, निर्विशेष तारे कहे ये श्रुति गण, प्राकृत निषेध करे अप्राकृत स्थापन। तो निर्विशेष तार कहे यही श्रुतिगण, शास्त्रों में भगवान को निराकार कहा गया, जबकि भगवान निराकार नहीं है। वेदों में लोग वेदों को लेकर के एक पूरा समाज बना दिए हैं, आर्य समाज, और कहते हैं भगवान निराकार है, जबकि भगवान निराकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक आकार नहीं है, मतलब हमारे जैसा। भगवान कौन है, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद विग्रह है। लेकिन लोग उनको क्या सोचते हैं, निराकार है, क्योंकि उनका हड्डी खून पीप ऐसा मांस का पुतला नहीं है ना, इसलिए लोग सोचते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, क्योंकि उनकी विशेषताएं दुर्लभ है, 64 गुण है भगवान में, और वेद कह रहे हैं कि भगवान निर्विशेष है। और लोग कह देते हैं भगवान निराकार है, निर्विशेष है, शून्य है, भगवान शून्यवादी है। और इन सबको तारने के लिए श्रील प्रभुपाद आते हैं, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। इन लोगों को तारने के लिए ही श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सेनापति प्रकट होते हैं मायापुर धाम, ताकि लोगों को लेके आए भगवान निराकार नहीं है। तो आर्य समाज के जो संस्थापक आचार्य थे दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम था मूल शंकर, और मूल शंकर ने बचपन में 5 वर्ष की आयु में अपने पिता को देखा कि वो शिव के बड़े उपासक हैं, और शिवलिंग के ऊपर खूब प्रसाद चढ़ाया महाशिवरात्रि में, और रात में कीर्तन हो रहा है, आजकल भी देखते हैं कांवड़ सेवा चल रही है, झमाझम कीर्तन हो रहा है, और कांवड़ के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो रहा है ना। तो वो उन्होंने भी ये सब देखा, और देख कर के उनके पिता बोल के गए, मैं अभी रात्रि स्नान के लिए जा रहा हूँ, रात के 2 या 3 बजे थे, बोले मैं स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके लौटूंगा तो तुम जरा ध्यान देना यहाँ पर कि है ना कोई भगवान के भोग को छुए ना। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण दीक्षित भक्ति आएंगे, इसको छुए ना कोई आकर के, है ना। तो देखा कि वहां पर एक चूहा आया और मूल शंकर के देखते देखते ही उसने शिवलिंग के ऊपर से बर्फी का एक टुकड़ा उठा करके भाग गया। मूल शंकर सोचने लग गए, 5 साल का बच्चा कितनी बुद्धि होती है बच्चे में, वो सोचने लग गए कि अगर शिवजी अपनी रक्षा चूहे से नहीं कर सकते और मेरे पिताजी कह रहे रक्षा माम त्राही माम, मेरी क्या रक्षा करेंगे, तो उन्होंने कहा मुझे भगवान को ढूंढना पड़ेगा। और वेदों का सहारा लेते हुए जहां पर नेति 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 बताया गया है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है, ऐसे है कैसे ये नहीं बताया, नेति 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 वेदों में वर्णन है। सारे वेद पढ़े, उन्होंने एक मिल गया कि भगवान की प्रतिमा नहीं होती, है ना, नाम प्रतिमा नास्ती, मेरी प्रतिमाएं नहीं होती। सच बात है, भगवान का पत्थर की मूर्ति थोड़ी है, भगवान तो साक्षात व्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। उन्होंने पढ़ लिया पहला श्लोक की पहली लाइन की भगवान की प्रतिमा नहीं होती, बस उसको उठाकर के पूरा एक समाज बना दिया, परिवार त्याग कर संन्यास धारण किया और दुनिया में बोलते रहे भगवान निराकार है निराकार है निराकार है, निर्विशेष निराकार है निराकार है, इस सब की जरूरत नहीं है, यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो। कितना बड़ा समाज बना, मतलब एक व्यक्ति अगर डिविएट हो जाए तो वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है फिलॉसफी का क्लियर होना। प्रभुपाद जी बोलते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं जो कि फेथ बेस्ड होते हैं, विश्वास पर भक्ति करते हैं। इफ यू हैव फेथ बट यू डोंट हैव फिलॉसफी तो यू आर सेंटिमेंटलिस्ट, आप सेंटिमेंटल व्यक्ति हैं। जिस दिन विश्वास टूटेगा उस दिन भक्ति समाप्त होगी, फिलॉसफी नहीं है, कोई पीछे शास्त्र नहीं है। और दूसरे तरह के होते हैं दोज हैव फिलॉसफी बट डोंट हैव एनी फेथ, जिन पे ज्ञान तो है लेकिन विश्वास नहीं है भगवान पर, थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाए ना तो विश्वास तो है ही नहीं उनका, तो खाली ज्ञान की बातें करते हैं, भगवान निराकार है भगवान निर्विशेष है। और ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो कि श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के बाद भी, भगवद गीता पढ़ने के बाद भी, जैसे भगवान कहते हैं अव्यक्त मूर्ति नाम, मैं अव्यक्त हूं, इसका मतलब क्या बोलते हैं, इसका मतलब है भगवान कभी प्रकट नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ कृष्ण रूप में मनुष्य को शक्ति देते हैं, वो तो जो कृष्ण आए ना उनकी हृदय में जो परमात्मा थे ना वो है असली भगवान। ऐसे भी कंफ्यूजन क्रिएटेड है लोगों में, और बहुत बड़ी बड़ी परंपराएं हैं निराकार निर्विशेषवादियों की, मायावादियों की, तो उनसे बचना पड़ेगा। मायावादी भाष सुन ले होइलो सर्वनाश, ऐसे लोगों का संग करना कि बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है, बड़ी अच्छी कथा कर रहा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहा है, मैं भी यूज करूंगा प्रीचिंग में, गया, उन व्यक्तियों का संग ही नहीं करना चाहिए। तो ये मूल शंकर ने पूरा एक समाज बनाया, लेकिन भूल गए कि उसके नीचे क्या लिखा है कि भगवान प्रतिमा नहीं है लेकिन भगवान साक्षात व्रजेंद्र नंदन है। जो मूर्ति मानता है पत्थर की उसको तो कभी भगवान मिलेंगे ही नहीं। तो सेंटिमेंटलिस्ट है जो फेथ करता है, फिलॉसफी नहीं है, लेकिन जिसके पास फिलॉसफी है फेथ नहीं है वो कौन है, मेंटल स्पेकुलेटर, मनोधारणा का धर्म पालन करता है। तो हमको क्या करना है, फेथ भी रखना है और फिलॉसफी भी रखनी है, आधो श्रद्धा। पहली सीढ़ी ही भक्ति की श्रद्धा है, लेकिन पहले कोमल होती है और अंत में प्रेम तक जाने पर भी श्रद्धा को हमें परिपक्व करना होता है। श्रद्धा कमजोर भी होती है, श्रद्धा मध्य भी होती है, श्रद्धा परिपक्व भी होती है। अब मेरी कोमल श्रद्धा है कि परिपक्व है ये भी, श्रद्धा नहीं होती तो कोई मंदिर थोड़ी आता। जो पहली बार जन्माष्टमी में मंदिर आएगा दर्शन करने उसमें भी श्रद्धा तो है, लेकिन उसकी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, थोड़ी सी भीड़ में धक्का पड़ते ही उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, प्रसाद ना मिलने पर उसकी श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा परिपक्व वो है कि कोई मुझे धक्का भी मार दे गालियां भी दे दे परंतु मेरा हरि नाम नहीं छूटे मेरी भक्ति ना छूटे, ये परिपक्व श्रद्धा है। इसको आने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत भक्तों का संग चाहिए, दृढ़ भक्तों का, तब हम समझ सकते हैं। जैसा श्वेताक्षर उपनिषद का प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं जिसमें वर्णन किया गया है कि भगवान कैसे हैं, वेदों में कहा गया है उपनिषदों में कहा गया, लेकिन लोगों ने उसकी गलत व्याख्यान करी है। कहते हैं अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, अपाणी, पाणी मतलब हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार होता है ना शादी विवाह में, पाणी, अपाणी पादो, पादो मतलब पैर चरण, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, जवनो मतलब भगवान स्वतंत्र है, ग्रहीता मतलब हर वस्तु को ग्रहण करने के लिए, लेकिन कैसे हैं, अपाणी अ मतलब कि आ लगाने से ये चीज नहीं है, अपाणी अपादो, इसका मतलब भगवान के पैर नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, भगवान का कहा। अगली लाइन में कहते हैं पश्यति अचक्षुषा श्रणोति अकर्णा। पश्यति अचक्षु, चक्षु के आगे क्या लगा दिया, आ, भगवान की आंखें नहीं है लेकिन देखते हैं। इसका मतलब तो लोग यही समझेंगे ना, बिना नेत्र वाले भगवान है। तो हम कहते हैं कमल नयन, फिर कमल नयन कहां से आएगा, जब श्लोक ही ले दिया पश्यन्ति अचक्षु अचक्षु, सत श्रुणोति और सुनते कैसे, अकर्णा, कर्ण के आगे आ लगा, अकर्णा कान भी नहीं है भगवान के। फिर आगे कहते हैं वेदों में कहा गया सवेति वेद्यम न चतस्यति वेता। स मतलब ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं भगवान, सवेति ये जानते हैं सब कुछ, वेद्यम सब वस्तुओं को, एक एक व्यक्ति के बारे में जानते हैं भगवान, लेकिन न चतस्यति वेति, लेकिन फिर भी उनको कोई नहीं जान पाता, उनको कोई नहीं जान पाता। तम आहुर अग्रम पुरुषम महान्तम, ऐसे महान पुरुष की चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में हो रही है। तो कौन है, अपाणी अपादो, पैर नहीं है भगवान के। एक बार हिजोली में राधा गोविंद स्वामी एक एयरपोर्ट पर थे, और दुबई का एयरपोर्ट था, तो वहां पर महाराज अपने व्याख्यान में वर्णन करते हैं कि मैं जप कर रहा था और वहां बैठा एक कट्टरपंथी मुस्लिम व्यक्ति इस्लामिक आकर के महाराज को देख रहा था, बोलता है आप हिंदू मौलवी हैं, वो उनको तो यही पता है ना मौलवी मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने कहा आप हिंदू मौलवी हैं, कहा हाँ मैं हिंदू मौलवी हूँ, और बोले फिर मैं जप करने लगा। तो वो व्यक्ति जो था वो पूछता है अच्छा अच्छा आप लोग वही हैं ना जो पत्थर को भगवान मानते हैं, पत्थर को भगवान मानते हैं। तो महाराज बोलते हैं मैंने उसको व्याख्यान में कहा हम पत्थर को भगवान नहीं मानते, अगर हम पत्थर को भगवान मानते तो इस पूरे एयरपोर्ट के अंदर जगह जगह पत्थर लगा, टाइल लगी हुई है, मैंने सब जगह दंडवत करता हुआ आना चाहिए था, लेटना चाहिए था कि सभी जगह तो पत्थर है और भगवान तो कण कण में वास करते हैं, सभी पत्थरों में विराजमान है, लेकिन नहीं हम हर पत्थर को नहीं झुकते। तो बोले फिर किसको पूजा करते हैं, बोले हम पत्थर के अंदर जो विशेष भगवान होते हैं ना जिनके आने से वो पत्थर श्री विग्रह बन जाता है उसकी हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया, तो सुन लिया वो ध्यान से। इतने में महाराज से बोलता है कि आपके ये हाथ झोली में क्या है, कहा मेरे झोली में भगवान का नाम जप माला है। कहा अच्छा अच्छा ये आपके नवाज अदा करने का तरीका है, नवाज करते हैं। इतने में सायरन बज गया और उनकी नवाज का वक्त हो गया, बोला कि चर्चा बाद में जारी रखेंगे मैं जरा नवाज कर लूं। तो उन्होंने कहा कि आप लोग, महाराज बोलते मैंने पूछा आप लोग कितने वक्त नवाज करते, कहा पांच वक्त। कहा अच्छा अच्छा बहुत सुना। तो वो बैठ गया, अपनी दरी वरी निकाली, वहीं पर ही चालू हो गया, थोड़े थोड़े क्रियाएं करी उसने, योग मुद्राएं बनाई, या अल्लाह याहू, है ना। एक व्यक्ति तो मजाक उड़ाता, कहता वो लोग तो आज तक हिस्ट्री नहीं जान पाए तो भगवान को क्या जानेंगे, हमेशा पूछते हैं अल्लाह हू अकबर, अकबर कौन है, अल्लाह अल्लाह हू अकबर, वो तो हिस्ट्री नहीं जान पाए तो भी भगवान को क्या जानेंगे, लेकिन फिर भी लगे अपने वो अपने, उसने पूरी अपनी आयतें और सारा का सारा बोला। तो महाराज बोले मैं बड़े ध्यान से उसको देख रहा था और मैंने पूछा अच्छा आपने अभी क्या किया, बोले हमने नवाज अदा करी। कहा नवाज मतलब प्रार्थना ना, बोले हाँ प्रार्थना। तो भगवान ने सुना क्या आपकी प्रार्थना को, या आपने ऐसे ही बोल दिया, बोले सुना क्यों नहीं, पूरा रोज सुनता है अल्लाह, पांच वक्त सुनता है। कहा अच्छा अच्छा लेकिन भगवान तो निराकार है ना, उसके कान तो है नहीं तो सुनेगा कैसे। तो व्यक्ति बोला कि नहीं नहीं कान है ना, अल्लाह के कान है, सुनेगा नहीं, बिना कान के कैसे सुनेगा, सुनता। कहा अच्छा अच्छा खाली सुनता सुनता है, बोलता कुछ नहीं है। बोला नहीं नहीं बोलता है। कहा अच्छा बिना जुबान के कैसे बोलता है, मुंह नहीं है। बोले हाँ मुंह है, बोलता है, अल्लाह हर चीज में बोलता है, हमेशा जवाब देता है। कहा अच्छा बोलता सुनता है खाली, कभी बुलाओ तो आता नहीं। कहा रे हर परिस्थिति में विषम से विषम में अल्लाह को आवाज लगाओ, दौड़ा चला आता है। कैसे दौड़ता, बिना पैरों के आता है, पैर तो है नहीं, निराकार है ना। कहा नहीं नहीं पैर है अल्लाह के। कहा अच्छा आता है लेकिन मदद नहीं कर पाता होगा क्योंकि हाथ तो है नहीं उसके, निराकार। कहा नहीं नहीं हाथ भी है उसके। कहा अच्छा हाथ भी है, पैर भी है, नाक भी है, कान भी है, खाता पीता कुछ नहीं, कह रहा नहीं खाता है, हम तो बलि चढ़ाते हैं तो अल्लाह लेता है। कहा फिर कैसे खाता, बिना मुंह के खाता है, उसको खाता है तो हजम नहीं होता है। कहा पेट भी है। कहा फिर ये सोचते सोचते बोलते बोलते वो व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वो महाराज को कहता है दंडवत कर दिया, नीचे लेट गया। कहता है मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मुझे अल्लाह का दर्शन कराया। अल्लाह अल्लाह तो बोलते हुए बहुत समय निकल गया, ऐसे भगवान 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 बहुत लोग बोल रहे हैं, कौन दुनिया में हिंदुस्तान में हर व्यक्ति जानता है किसके भरोसे चलता है जीवन, बोले जी भगवान भरोसे। लेकिन वो भगवान कौन है, इसी की प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, कॉम्पिटिशन, शिव जी है कि गणेश जी है कि दुर्गा जी है कि निराकार है कि निर्विश, यही तो है। भगवान सब जानते हैं लेकिन भगवान कौन है ये बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जान जाते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं, शास्त्रों का मत समझ जाते हैं कि अपाणी अपौदो, जो ये बोला गया जवनो ग्रहीता, जो सब कुछ जानता है वो अपाणी नहीं है, लेकिन उसके पैर हमारे जैसे नहीं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पैर में तीर लगा और भगवान मर गए, ये व्याख्यान सबसे थर्ड क्लास व्याख्यान है, क्योंकि भगवान अपाणी है, उनके अपदो हैं, उनके पैर नहीं है भौतिक कि पैर में तीर लगा और मर गए। वैसे भी कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी हो जिनके भौतिक शरीर हो, उसके भी पैर में तीर लगने से कभी कोई मरा नहीं आज तक। पैर में कोई ब्लेड लग जाए तो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल ले जाके एम्प्यूटेशन करा देंगे, पैर का हिस्सा काट देंगे जहां जहर फैल गया है कि, लेकिन मर जाएगा क्या कोई व्यक्ति पैर में कोई ब्लेड लग जाए तो, सुई लगने से। और भगवान अपाणी अपदो, जिनके पैर नहीं है, जिनके हाथ नहीं है, जिनके भौतिक पैर नहीं है, भौतिक हाथ नहीं है, आध्यात्मिक पैर है, आध्यात्मिक हाथ है, वो क्या मर जाएंगे? तो इसलिए ऐसे लोगों की वाणी सुनेंगे तो भ्रमित रहेंगे। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को जान लेता है तो वो सब कुछ जान लेता है। यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, अगर कोई कृष्ण को जान लेता है तो वो सब कुछ जान लेता है। लेकिन अगर कृष्ण को ही नहीं जान पाया तो वो कुछ भी नहीं जान पाया, चाहे वो कितनी डिग्री ले ले, एमबीए कर ले, एमटेक कर ले, बीटेक कर ले, सब बेकार। लेकिन भगवान को जानने मात्र से आप सब कुछ जान जाएंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। आप देखें अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से भगवद गीता के 12वें अध्याय, क्या नाम है 12वें अध्याय का? भक्ति योग। भगवान ने 12वें अध्याय के अर्जुन ने प्रथम श्लोक में ही प्रश्न किया है, क्या प्रश्न पूछा? वो बोलते हैं एवं सतत युक्ताम ये भक्तास्त्वं परुपासते ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। हे प्रभु, योग वित्तमः, तमा मतलब होता है जो परम सिद्ध है। योग में परम सिद्ध कौन व्यक्ति है? एवं सतत युक्ताम ये, जो आपकी पूजा में निरंतर लगे रहते हैं, मंगला आरती आते हैं स्कॉन में और भजन करते हैं और बोलते रहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, एवं सतत युक्ताम ये सतत युक्त रहते हैं वो, या फिर भक्तस्तम परिउपासते और भक्त बन के आपकी उपासना करते हैं, या फिर ये चा अपि अक्षरम अव्यक्तम, जो आपको निराकार मानते हैं, अक्षर मानते हैं, अव्यक्तम मानते हैं, इन दोनों में से कौन से योग वित्तमः, कौन से योग सिद्ध है, कौन से सिद्ध है? अर्जुन ने पूछा 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। निराकार भी एक रास्ता है लोग कहते हैं, लेकिन भगवान से पूछा कि भाई ये रास्ते में से कौन सा सिद्ध माना जाएगा आपके अकॉर्डिंगली, आप ही बताओ, सृष्टि की रचना आपने करी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा मई अवेश्य मनाय माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया परुपाते न मे युक्त तमह मतः। मई आवेश्य मनाय माम, जो अपने मन को ये काम करता है, मई अवश्य मनः ये माम, अपने मन को मेरे साकार रूप पर लगाता है, राधा गोविंद पर, सीताराम लक्ष्मण पर, जो मेरे श्री विग्रह के साकार रूप पर अपने मन को लगाता है और नित्य युक्त उपासते, ऐसा नहीं कि एक दिन करता है जन्माष्टमी में फिर एक साल के लिए भूल जाता है, नित्य युक्त रोज की रोज वो डेली एक्टिविटी करता है उपासना श्रद्धाया, और उसका प्रथम क्वालिफिकेशन है कि श्रद्धा के साथ डेली एक्टिविटी करने बहुत लोग आते हैं, धूप बत्ती चढ़ाते हैं, घी का दिया चढ़ाते हैं, तरह तरह से भगवान के पैर छूते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके छूते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके दबाते हैं, कुछ लोग गोल गोल नाचते हैं भगवान के आगे और कुछ लोग अगरबत्ती लगाते हैं, कुछ लोग भगवान को पहले ऐसे टीका दिखाते हैं फिर अपने माथे पे लगा लेते हैं, तरह तरह की क्रियाएं लोग कर रहे हैं, लेकिन इनमें श्रद्धा नहीं, क्योंकि शास्त्रिक श्रद्धा नहीं है। दो प्रकार की श्रद्धा है, लौकिक श्रद्धा, शास्त्रिक श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा है लोक व्यवहार से सीखा हुआ ज्ञान, वही श्रद्धा है, जो पिताजी ने सिखा दिया वही है, लेकिन लौकिक श्रद्धा से उत्तम है कि हम शास्त्रिक श्रद्धा लेके आए कि भगवान की उपासना कैसे की जाए। इतने ग्रंथ है भगवान की उपासना जानने के लिए। श्रीमद् भागवत है जिसमें 11वें स्कंद में भगवान की स्तुति करना, भगवान के किस प्रकार से उपासना करना, षोडश उपचार से भगवान की पूजा करना, गृह में कैसे करना और मंदिर के गर्भगृह में कैसे करना, दोनों का व्याख्यान है। और भी कई सारे ऐसे श्रुति शास्त्र हैं जिसमें वर्णन किया गया, तो हम उनसे सीख सकते हैं उपासना पद्धति क्या है। और श्रद्धा या परिउपासते, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति करता है, भगवान ने कहा मैं युक्त तमह मता, मैं उसी को युक्त मानता हूं। किसमें? सिद्धि में। तमह सिद्धि वही व्यक्ति प्राप्त करेगा जो साकार रूप की पूजा करेगा, श्रद्धा के साथ करेगा और नित्य युक्त होकर करेगा, रोज रोज करेगा। ये नहीं एक दिन किया, दो दिन किया, चार धाम यात्रा कराए तो बोले कि अब तो हमारा टिकट पक्का है चार धाम कराए, उसके बाद 12 महीने भूल गए भगवान को, एक एक महीने में एक धाम चार धाम कराए, ऐसा नहीं है। नित्य युक्त उपासित है कोई व्यक्ति, कोई वृंदावन भी जाए, कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाए, कहीं से भी आए, लेकिन जब तक उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, वो भगवान का नित्य युक्त उपासना नहीं कर रहा है, तो उस व्यक्ति के जीवन में भगवान कृपा करके उसे गोलोक धाम का टिकट देंगे बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और इसीलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बताया गया कि साकार रूप की पूजा करने में कई प्रकार के प्रश्न और संशय जीवन में आएंगे, उन प्रश्न और संशयों को जिस पल आए उसी पल समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि संशय बताया गया है कि संशय जो है वो असुर का बच्चा है, असुर जो होते हैं राक्षस उनका पुत्र है संशय। राक्षस कैसे पैदा होते हैं? मनुष्यों की तरह नहीं होते हैं, देवताओं की तरह नहीं होते हैं कि एक महीने का, फिर दो महीने का, फिर तीन महीने का, फिर बड़ा 10 साल 15 साल। और असुर ऐसे पैदा होते हैं, पैदा हुआ तुरंत विशाल हो गया, पैदा हुआ तुरंत विशाल हो गया। और असुर का पुत्र है संशय, जैसे ही संशय आएगा पैदा हुआ तुरंत विशाल। अगर संशय समाप्त नहीं किया, असुर को मारना है तो कब मार दो, पैदा होते मार तो मर जाएगा, वरना अगर बड़ा हो गया तो फिर भगवान को आना पड़ता है उसको मारने के लिए, रावण जैसा असुर बन जाएगा, हिरण्यकश्यप जैसा असुर बन जाएगा, हिरणाक्ष जैसा असुर बन जाएगा, तो इसको भगवान को आना पड़ेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो उस असुर को समाप्त करना, बीज रूप में ही मार दो उसको। तो ऐसे ही संशय बीज रूप में मर जाना चाहिए, जैसे ही डाउट क्रिएट हो डिवोटी के प्रति, टेम्पल के प्रति, स्कॉन के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, शास्त्रों के प्रति, तुरंत अपने काउंसलर, अपने सीनियर डिवोटी से पूछ करके उस संशय रहित हो जाए, असुर को बड़ा ना होने दे, क्योंकि एक बार असुर बड़ा हुआ तो हृदय में पूरा वो घेर लेता है अपना ग्राउंड। घास लगाओ आप तो बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन जो खलपतवार है ना, पेड़ लगाओ तुलसी का, तो बड़ा मेहनत करनी पड़ती है कि बीज लगाने के बाद धूप ना लग जाए, ठंड ना लग जाए, बारिश में ना गल जाए, पानी ना भर जाए, लेकिन उसके साइड में घास फूस जल्दी बढ़ती है। तो भगवान कृष्ण की भक्ति बढ़ाने के लिए तो बहुत ध्यान पूर्वक जप साधन करना है, परंतु ये टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है ये बढ़ने में टाइम नहीं लेती है। संशय आएगा बीज में, तुरंत पूरे ग्राउंड में फैल जाएगी, है ना। तो इसलिए संशय रहित होकर के भजन करना, ये भी चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि प्रश्न भी किस प्रकार पूछे जाएं। चैतन्य महाप्रभु जानते थे लोगों को प्रश्न पूछना भी नहीं आता है। जैसे प्रभुपाद जी एक बार अमृतसर से दिल्ली आ रहे थे, तो एक व्यक्ति ने देखा कि स्वामी जी जा रहे हैं, उनके विदेशी शिष्यों ने लॉक किया हुआ था चारों तरफ से, तो भागे भागे वहां से दो हिंदुस्तान के जो गुजराती लोग थे वो आए और खिड़की पर ठक 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 करने लगे। तो स्वामी प्रभुपाद के शिष्यों ने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा हमको स्वामी जी से मिलना, हमने देखा है स्वामी जी का अखबार में फोटो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो अभी बिजी हैं, साधना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने पूछा क्या हुआ? बोले कोई दो हिंदुस्तानी है गुजराती, वो आना चाहते हैं आपसे मिलने। कहा अच्छा, लगता है अब हिंदुस्तान के लोग भी मुझे समझने लगे हैं, वरना खाली विदेशी समझ रहे थे। और इसीलिए आज भी इस्कॉन वृंदावन को विदेशियों का मंदिर है ना, अंग्रेज मंदिर कहते हैं। तो वो ले आए, बोले ठीक है आने दो, मिलने के लिए आने दो। तो गेट खोल दिया गया, ट्रेन तो खड़ी थी, दोनों ऊपर आ गए गुजराती, स्वामी जी का पैर पकड़ लिया, एक ने लेफ्ट से एक ने राइट से। तो स्वामी प्रभुपाद पूछते हैं बोलो बोलो क्या कृपा चाहिए? क्या स्वामी जी कृपा कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। क्या कृपा चाहिए? कहा हमारे घुटनों में बहुत दर्द है, कोई दवाई बता दीजिए। प्रश्न क्या पूछना है ये भी नहीं मालूम, घुटनों में बहुत दर्द है, कोई दवाई हो तो आप विदेश से आए, आपको मालूम हो कोई दवाई स्पेशल, तब तो इतना नहीं था ना, इंटरनेट से मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो। तो प्रभुपाद जी से बोल रहे थे, आपके विदेशी शिष्य हैं, कोई आयुर्वेद की दवाई हो, घुटनों का दर्द बहुत है। तो स्वामी प्रभुपाद जी कहते हैं, नहीं, अगर मेरी कृपा चाहिए तो घुटने का दर्द भी जाएगा और जन्म मृत्यु का दर्द भी चला जाएगा। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले जैसे इन लोगों ने अपने बालों का मुंडन किया है, मुंडन कर दो, और जैसे एक पंखा लेकर, चंवर लेकर मेरे पे हवा कर रहा है, ऐसे तुम भी अपना जीवन त्याग कर मेरी सेवा में आ जाओ, मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के दर्द से ही भुला दूंगा, घुटना तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। तो दोनों ने क्या किया, रुक गए, भाग गए वहां से तुरंत गेट खोल के। बोले भागो स्वामी जी तो फंसा देंगे। एक बार गौर किशोरदास बाबा जी के पास भी एक ऐसा व्यक्ति आया था, बोला बाबा जी मैंने आपके लिए महल बनाया वृंदावन में, आप वहां चल के रहिए। कहा पत्थरों में रहते हैं। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा वृंदावन में महल बनाया? कहा हाँ, मैंने घर खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां महल बनाया आपके लिए, आप वहां रहिए, भजन करिए, मुझे कृपा करिए, मेरे घर में साधु रहेंगे। तो गौर किशोर बाबा जी ने कहा कि तुम माया के दूत हो, वृंदावन की तुमने जमीन खरीद ली, जानते हो वृंदावन का कण कण चिंतामणि है, उसको खरीदने के लिए पूरे संसार की दौलत लग जाए तो एक कण वृंदावन का नहीं खरीद सकते, और तुमने वहां जमीन खरीद ली, मकान बना लिया, महल बना लिया, और मुझे लॉक करना चाहते हो अंदर। तुम अगर सच में भक्त बनना है ना, उस महल को त्याग दो, जैसे मैं रहता हूं फटे हाल ऐसे तुम भी रहो, पत्थर पे खिचड़ी डाल के जीप से खाएंगे और दोनों बैठकर जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भाग गया वो भी। तो इसलिए प्रश्न क्या पूछे साधु से, ये जानने के लिए भी चेतन महाप्रभु ने कृपा करी, रामानंद राय से प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। तो रामानंद राय बोलते हैं कि महाप्रभु जो उत्तर मैंने दिए हैं ये मैंने नहीं दिए हैं, मैं तो एक गिटार के समान हूं, वीणा के समान हूं, जिसके अंदर तार लगे हुए हैं और आप बजाने वाले हैं, जो दो तार बजाते हैं वही स्वर निकलता है। जैसा प्रश्न पूछते हैं और फिर बजाते हैं तो उत्तर भी आप ही दे रहे हैं और प्रश्न भी आप ही पूछ रहे हैं। तो श्रवणकर्ता श्रोता जो हैं उनको इस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जैसे चैतन्य महाप्रभु ने पूछे। भगवान ने कहा लोगों को सिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन भी कैसे पूछना चाहिए, इसलिए संशय रहित होकर के चैतन्य चेतामृत को ग्रहण करिए। भगवान निराकार नहीं है, और अगर निराकार में आपको ये लगता है कि भगवान निराकार है, संशय है, तो उन संशयों को जल्दी क्लियर करें इससे पहले कि वो असुर बनकर आपसे आपकी भक्ति छीन लें। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। पंच तत्व गौर निताय की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर हरि प्रेमानंदे।